उनको सौगंध दे करके सिर को उनको लहराया, आगे बढ़ने लगे। किंतु नंद बाबा माने नहीं, वो थोड़ा और आगे बढ़े। और इतने में कृष्ण ने देखा पास में ही खड़ी गोपियों को, विशेष करके राधिका जी, वंशी करान निपतितम खलितम शिखंडम भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज सून जस्या कटाक्ष सरघात विमुच्छ तस्य संग राधिका परिचरामी सदार। उस समय में कृष्ण के हाथों से बंसी गिर गई, उनका पीताम्बर भी गात्र से स्खलित हो गया, गिर गया, और कृष्ण स्वयं मूर्छित होने लगे, तलमल तलमल करने लगे। तो मधुमंगल जी ने हाथ से उनको धक्का देकर कहा, ये क्या कर रहे हो, नंद बाबा यहीं पर खड़े हैं। स्मरण लग कृष्ण किस प्रकार से होश में आए, उस दृश्य को देखो, यहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, आप उनके तरफ में देख रहे हैं। ये पृथ्वी को आज ही सौभाग्य हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ। आइए भी हुआ उन गोपियों के संपर्क से। खग मृगा अद्र, अद्रमान पर्वत के लिए हमने बतलाया, पृथ्वी के वक्षस्थल ये गिरिराज जी हैं, इसलिए उनका स्पर्श होना पृथ्वी के लिए आज परम सौभाग्य की बात है। कृष्ण का सत्ते सुजात चरणम वरूहम तनेशु भीता स्वनई प्रिय दिदी नहि करकसे तेनाटवीम अटसि तद गथतेन कुंसित कुरुपाद भी भ्रमति भिर औदांगिता। गोपियां जिन चरणों को बड़ी संभाल करके इसी अंगों पर धारण करती हैं और खेद करती हैं, और उसको आज गिरिराज जी के ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में रख रहे हैं, आज पृथ्वी का कितना धन्य। खग मृगा धन्या समूढ़ मतयो हरण्य ताजा नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रितम सह कृष्ण सारा पूजांग ददो विरचितांग प्रणयावलोक प्रणयावलोक। ये हिरणिया धन्या मूढ़, मूढ़ होने पर भी आज धन्य है, क्यों प्रणय पूर्वक कृष्ण के तरफ में अवलोकन करके हुए प्रणय की भिक्षा मांग रहे हैं। किसी भी अवतार में ऐसा नहीं हुआ, राम के अवतार में भी ऐसा नहीं, जो आज ही ऐसा हो रहा है। प्रणय की भीख ये कौन मांग रहा है, हिरणिया मांग रही है, पति उसका पीछे में है, प्रणय पूर्वक कृष्ण के तरफ में देख रही। कृष्ण इनके तरफ में देखते होंगे कि नहीं, कृष्ण सदैव अवलोक उनके तरफ में दया करके अवलोकन। अच्छा अच्छा ठीक है, अगले जन्म में तुम गोपी के घर में गृह में जन्म लेना, और उस समय में तुमको मैं पूर्ण रूप से मिलूंगा, ये कहें होंगे कि नहीं। या वो नित्य सिद्ध में हरिणी ही है जो इसी भाव में रहती है और कृष्ण की इसी रूप में सेवा करती हैं, जिस सेवा को देख करके गोपियां कहती हैं कि मरने के बाद में हम हिरण हों, और हिरण होने के बाद में हमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, सीधे आपके साथ में हम प्रणय करते हैं। इसलिए ये हिरणियां यथार्थ फल में है। खग, खग माने पक्षी, वो पक्षी धन्य है जो कृष्ण को सवेरे उठाता है। सबसे पहले कौन उठाता है, जिसके सिर पर लाल लाल ताम्र पुच्छ अर्थात वो जो कुक्कुट होता है, ये जो करता है, ये धन्य है जो कृष्ण को उठाता है। कृष्ण शयन कर रहे हैं और उठ नहीं रहे, वृंदा जी उसको कहा, इंगित किया, जल्दी से उठाओ। श्रीमती जी कुछ उठ जाती हैं, कहती हैं कि तुम जम के घर में जा करके शोर करो, यहां मत करो, तुम जमाले में क्यों नहीं जाता, मन मर जा। तब कुछ बंद हो गया, जब ठीक हो गया थोड़ी देर के बाद में फिर उसने किया, वृंदा जी ने इंगित किया, फिर बोलो। तब वो कहती है, कहती है जिसे ये तो शोर मचाना बंद नहीं कर। इतने में उनकी एक सखी थी, कौन सखी, रमण मंजरी कौन कह रहा, ललिता जी कह रही, जाओ इसको बंद करो कखटी को, ये शोर न मचाए, उसको इस तरह से ये सब लीलाएं, वो कितना सौभाग्यवान होगी। वो भ्रमर गुंजार जो कर रहे थे फूलों पर, वो कितनी सौभाग्य जी कृष्ण को राधा जी को जगा रहे होंगे। वह विचक्षण सुखों का सरदार, रसिक सुखों में से जो सब दक्ष भी सबसे बड़ा दक्ष, और शुभा ये सब कितनी ये कृष्ण के लिए और राधा जी को जगा रहे हैं। अरे तुम्हारी मैया जग गई तो तू ही आ जाएगी, और कितनी तरह की बातें कर रहे हैं तू, और उनको प्रसन्न करके धीरे धीरे उठा रहे हैं। कितने सौभाग्यवान हूं यदि किसी का ऐसा सौभाग्य हो जाए राधा कृष्ण को जगाने के लिए पशु पक्षी भी ऐसे हो जाएं जो मधुर रूप में करते हैं। इतने में कोयल ने कहा कुहू कू, मैंने क्यों सो रही, क्यों सो रही, उठो उठो। और जो कोकुल पुरुष है वो कृष्ण के लिए कह रहे तुम क्यों नहीं उठ रहे। इतने में मोर ने शोर करना आरंभ कर दिया का के का, उनको उठाने। ये कैसे सौभाग्यवान है खग, राजहंस है वो ऐसे बोलता है मानो राधा कृष्ण के चरण में के नूपुर बज रहे हो। उसके साथ में तुलना किया, इनके चरणों का नूपुर कैसे बजता है, जैसे राजहंसों का वो बोलना है। ये सब पक्षी धन्य है, वो चकवा और चकई धन्य है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में द्वारका में राज महिषियों ने किया, कुररी पक्षी किया दिया। ओ तुम्हें भी अपने पति का वियोग हो गया हमारे जैसे, इसलिए तू विलाप कर रही। तो ये सब पशु पक्षी कृष्ण के धन्य है। वो बंदर धन्य नहीं होंगे जिनकी पूंछ पकड़ लिया तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे हैं, और कृष्ण भी ऐसे हों उनका पूछ पकड़ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे हैं। सभी जीव जंतु वहां के धन्य है कृष्ण के, विशेष करके वृंदावन के खग मृगा सदयावल। कृष्ण दयापूर्वक उनकी तरफ में देखते हैं, दया माने अपनत्व लेकर के देखते हैं उनके तरफ, बड़े प्रेम के साथ में देखते हैं, जिस प्रेम की एक निगाह पर मनुष्य अपना सर्वस्व दे देता है। गोपनियों अपना सर्वस्व और कृष्ण ने अपना सर्वस्व गोपियों को दिया किस लिए, इन कटाक्षों के ऊपर भी सब कुछ उन्होंने अपना दे दिया। सदया बोलो कई एक एक से ऊपर चल रहे हैं, इन खग मृगों से भी अधिक कौन श्रेष्ठ है, गायें धन्य हैं जिनको चराने के लिए सेवा कृष्ण करने जाते हैं और उनको जिनका स्तनपान करते हैं, पशु पक्षियों का स्तनपान करेंगे। इनके बेटे हो गए, इनके बछड़े बन गए कृष्ण जिनका दूध पाने के लिए। ब्रह्मा जी के यज्ञ इत्यादि में से कुछ भाग नहीं लेना चाहते, उसे अपने को ऋणी कृतार्थ नहीं मानते, और इन गोपियों का दूध पीने के लिए मचल उठे, एक नहीं लाखों, इसे भी पेट नहीं भरा तो लाखों गोपियों के बेटे बन गए। इसलिए गायें धन्य, और इन गायों से भी धन्य वो गोपियां जशोदा मातृस्थानीय, वो धन्य जिनके बेटे होकर के जिनका स्तन किया, जिनके लाल लड़ाए हुए लड़े, इसलिए वो धन्य है। ये सखा लोग धन्य है, सुदाम सुदाम वसुदाम जो कृष्ण की तरह तरह से सेवा करते हैं, एक हृदय अभिन्न हृदय जो है ये सखा लोग धन्य है। तो इतना श्लोक अंदर में नहीं आया किंतु बीच में ये आ गया, इसलिए उसका भी वर्णन समझ लो। इसलिए अंत में गोप्यो अंतरेण भुजयोपि जत सिहासी, अब इसका वर्णन हम नहीं नहीं बैठिए कल करेंगे और अच्छी तरह से, आज यहीं तक रहने दो। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो, इस सबकी चिंतन करना चाहिए, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना भी होनी चाहिए, ऐसी कथाएं सुन सकें इनका चिंतन करें, ये भक्ति का अंतिम चूड़ान। ये देखो कल मैं रावड़ी था, किंतु तुम्हारे जैसे दुर्जन से संग होने से आज मैं चट्टी बनाई यहाँ पर पड़ा। कल मैं पूरी पकवान मिठाई था,